नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदान वाले क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प। 17 विकासशील देशों का विश्व व्यापार संगठन को मजबूत करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने पर जोर। खाली पदों को भरने का अनुरोध। भारत ने कहा, देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ईरान से तेल के आयात पर निर्णय लिया जाएगा। श्रीलंका में रात का कर्फ्यू जारी, 60 से अधिक लोग गिरफ्तार। और जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में पहली भारतीय महिला। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए आज विभिन्न स्थानों पर राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं कर रहे हैं। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 59 सीटों के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार में बक्सर और सासाराम में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों की तीखी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि ये भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए ही है जो देश को नई दिशा दे सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास एनडीए का मूल मंत्र है और यही सबको सुरक्षा और सम्मान प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा,
ये चुनाव सिर्फ ये तय करने के लिए नहीं है कि कौन सा दल या गठबंधन जीतेगा, बल्कि ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले वर्षों में भारत कितनी तेजी से विकास करेगा। ये चुनाव 21वीं सदी के हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा।
इससे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री ने एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और बेसहारा लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से वाराणसी के लोगों को संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जीवन और राजनीतिक यात्रा में काशी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि वे इसे अपना सौभाग्य समझते हैं कि यहां के लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रोड शो किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नीमच में चुनाव प्रचार किया। उज्जैन और नीमच में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी न्याय योजना से गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम लोगों को सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा,
पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा में दो बजट पेश होंगे। पहला बजट किसानों का बजट होगा, उसमें मध्य प्रदेश के किसानों को साल की शुरुआत में ही बता दिया जाएगा। इस प्रकार का काम आपकी सरकार करने जा रही है आपके लिए।
लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। उन्होंने कांग्रेस की भी आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार गलत नीतियों के कारण सत्ता से बाहर हो गई।
आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही, किंतु कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस कांग्रेस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा।
भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रोड शो के दौरान सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा समर्थकों के बीच झड़पें हुई। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के सलीमपुर संसदीय क्षेत्र में सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गठबंधन की साझा रैली को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक भाजपा शासन में परेशान हैं और भ्रष्टाचार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि ये पार्टी झूठे वादे करती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव के बाद देश में नई सरकार और नया प्रधानमंत्री होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन के दौरान देश की आर्थिक हालत बिगड़ गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
मध्य प्रदेश में युवा मतदाताओं ने इन चुनावों में अपनी अपेक्षाओं के बारे में आकाशवाणी को बताया।
मेरा नाम मनीषा पालीवाल है और मैं इंदौर के साकेत नगर की निवासी हूं। इस चुनाव में मैं पहली बार मतदान करूंगी और मेरे लिए प्रमुख मुद्दे होंगे युवाओं की शिक्षा एवं उनका रोजगार। इसके अलावा इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी वगैरह के लिए योजनाएं भी मेरे लिए आवश्यक है।
मेरा नाम अरुण व्यास है और मैं एक प्राइवेट टीचर हूं। मेरी अपेक्षा है कि इस तरह की सरकार चुनी जाए जो गरीबी को हटाए और रोजगार को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करे।
मेरा नाम दिनेश चौधरी, अध्यक्ष उमंग विकलांग संगठन मंदसौर। सभी विकलांग बंधु ये चाहते हैं कि सांसद ऐसा होना चाहिए जो विकलांगजनों एवं शोषित वर्ग की आवाज संसद में उठा सके।
अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में 13-13 सीटों, पश्चिम बंगाल में 9 और बिहार तथा मध्य प्रदेश में 8-8 सीटों पर मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की एकमात्र सीट के लिए इसी चरण में मतदान होगा। मतगणना 23 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके धमकी भरे बयानों की खबरों के बाद उन्हें भाषण देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज आयोग से मिलकर इस मसले पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया। बाद में मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता अरुण सिंह ने टीएमसी के समर्थकों पर राज्य में चुनाव में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया।
पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा बढ़ रही है और वो यह कह रही है कि इंच बाय इंच में बदला लूंगी। हम चुनाव आयोग से यह शिकायत करने आए कि अगर किसी पार्टी का नेतृत्व इस प्रकार के वक्तव्य दे तो भाषण देने से उनको रोकना चाहिए, बैन लगाना चाहिए और इसके साथ साथ स्पष्टीकरण भी तुरंत उनसे मांगना चाहिए। चुनाव आयोग से हमने मांग किया है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया जाए।
डीएमके पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने इस खबर को गलत बताया है कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने की कोशिश में लगी हुई है। चेन्नई में जारी बयान में स्टालिन ने कहा कि अगर यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो वह पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने तूतीकोरिन में संवाददाताओं को बताया था कि डीएमके भाजपा के साथ गठबंधन के लिए पार्टी से संपर्क में है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है।
ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
निर्वाचन आयोग की ओर से जनहित में जारी।
एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत न मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से आधार कार्ड बनवाया था इसका।
सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना,
उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है।
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
तो अब सोच लो,
आधार अपना लो, फायदे में रहोगे।
ये आकाशवाणी है। 17 विकासशील देशों ने विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय इकाई में खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इन देशों ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस वर्ष दिसंबर तक वैश्विक व्यापार संगठन का विवाद निपटारा इकाई पूरी तरह ठप पड़ जाएगी। नई दिल्ली में विश्व व्यापार संगठन की दो दिन की मंत्री स्तरीय बैठक के अंत में इन देशों ने सभी सदस्य देशों के लाभ के लिए विश्व व्यापार संगठन को मजबूत करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने पर जोर दिया। बैठक के बाद 13 मुद्दों का घोषणा पत्र जारी किया गया। इससे पहले दिन में बैठक में वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि विकासशील देशों में 7 अरब 30 करोड़ आबादी रहती है, जिन्हें विकास के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के साथ आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान सहित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस क्षेत्र के हाल के घटनाक्रमों के बारे में ईरान के रुख से भारत को अवगत कराने के उद्देश्य से मोहम्मद जरीफ ने खुद ही पहल कर ये यात्रा की है। दोनों पक्षों ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना और अन्य द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि भारत ने व्यापक कार्य योजना के बारे में अपना रुख दोहराया। सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत चाहता है कि समझौते से जुड़े सभी पक्ष अपनी प्रतिबद्धता जारी रखें तथा सकारात्मक बातचीत के जरिए सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकालें। ईरान से तेल खरीदने के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने भारत का रुख दोहराया कि देश के व्यावसायिक और आर्थिक हितों तथा ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर आम चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। ओडिशा को फोनी चक्रवाती तूफान से हुए जानमाल के नुकसान की समीक्षा के लिए वहां गए अंतर मंत्री स्तरीय केंद्रीय दल ने आज दूसरे दिन कटक और तटवर्ती जिले पुरी का दौरा किया। चक्रवाती तूफान से प्रभावित क्षेत्रों के 3 दिन के दौरे के बाद कल दिल्ली रवाना होने से पहले केंद्रीय समीक्षा दल भुवनेश्वर में मुख्य सचिव आदित्य प्रसाद पाढ़ी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से एक दौर की और बैठक करेंगे। दल चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर उस घटना के बारे में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है, जिसमें हापुड़ में घरेलू सहायिका को कथित तौर पर उत्पीड़न और सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा। आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
जवानों का यार न्याय, बहन बेटियों का सम्मान न्याय, हर घर की है शान न्याय।
अब होगा न्याय, कांग्रेस को वोट दे।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। समूचे श्रीलंका में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। पिछले 2 दिनों के दौरान हिंसा के आरोप में 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देश के किसी भाग से हिंसक घटनाओं की खबर नहीं है। एक रिपोर्ट।
पिछले 2 दिनों की हिंसा के बाद सरकार आज हरकत में आती दिखी और 2 बौद्ध कट्टरवादी संगठनों के मुखिया के अलावा कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हिंसा से प्रभावित उत्तरी पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई और प्रांत में स्कूल और कार्यालय आज बंद रहे। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि ईस्टर हमलों के पीछे कुछ आतंकवादियों की गलत करतूतों से सामान्य मुस्लिम जनता को मार सहनी पड़ रही है। वहीं कुछ का ये भी कहना है कि समाज में धार्मिक वैमनस्य पहले से भी था, इसे फिर एक नया बहाना मिला है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार।
भारत की जीएस लक्ष्मी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। घरेलू महिला क्रिकेट में 2008-2009 से मैच रेफरी की भूमिका निभा रही लक्ष्मी अब तक महिलाओं के 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों और 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी रह चुकी हैं। आईसीसी के एम्पायरों के डेवलपमेंट पैनल में अब महिलाओं की संख्या 7 हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदान वाले क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान तृणमूल कांग्रेस पार्टी और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प। 17 विकासशील देशों ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटारा तंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। भारत ने कहा देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ईरान से तेल के आयात का निर्णय लिया जाएगा। समूचे श्रीलंका में रात का कर्फ्यू जारी। 60 से अधिक लोग गिरफ्तार और जीएस लक्ष्मी आईसीसी के मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में पहली भारतीय महिला बनी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।